आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपनी हुक्मरानी के तहत हर रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। इम्तहान का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी अगले साल तालीमी इदारों में दाखिले के लिए सिर्फ दाखला इम्तहान कराएगी और वो भर्ती से मुतालिक किसी इम्तहान का इनेकाद नहीं कराएगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज पीचिंग में भारत चीन खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका अगले महीने से भारतीय बाशिंदों को सफर के लिए मुफ्त वीजा फराहम करेगा। और वेस्टइंडीज ने खवातीन के T20 बैन अलाकवामी मैच में भारत को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद तजवीज रखी है कि ये बिल JPC के हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि इन पर हर सतह पर तफसीली बहस मुबाहिसा होना चाहिए। जनाब शाह ने यह बयान लोकसभा में हंगामा आराई के दौरान दिया, जब कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आईन का 129वां ये तरमीमी बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कानून का तरमीमी बिल 2024 पेश किया ताकि इन बिल्स पर एक साथ वोटिंग हो जाए। लोकसभा में जैसे ही ये बिल पेश किए गए, अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस बिल पर इतराजात जाहिर करने शुरू कर दिए। पार्लियामेंट के ऐवान जेरी में ये बिल्स पेश करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा था कि हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब बिल को JPC के हवाले करने को तैयार है। उन्होंने इस बिल पर एतराज किए जाने को महज एक सियासत करार दिया।
संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है। जब मैंने बताया, जब बात JPC की आई गई तो डिटेल चर्चा JPC में होगी। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग आई है।
इन दो बिल्स का मकसद मुल्क में लोकसभा और रियासती असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराया जाना है। JPC एक एडहॉक कमेटी है जिसे पार्लियामेंट ने किसी मखसूस मौजू या बिल की पूरी तरह जांच करने के लिए कायम किया है। इसमें दोनों ऐवानों, बरसर इख्तदार पार्टी और अपोजिशन पार्टियों के अरकान शामिल हैं। अलबत्ता अरकान की तादाद तय नहीं होती। JPC को जांच मुकम्मल होने के बाद तहलील कर दिया जाता है। JPC की सिफारिशात महज मशवरे की हैसियत रखती हैं और हुकूमत JPC के फैसले की पाबंद नहीं होती। कमेटी माहिरीन, इदारों, एसोसिएशनों और अफराद से शवाहिद भी हासिल कर सकती है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि BJP अपने इख्तदार वाली हर रियासत में यकसा सिविल कोड UCC लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आईन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिसे के इख्तिताम पर जनाब शाह ने मुल्क भर में UCC लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वजीर दाखला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्जाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेकुलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों लागू नहीं हो सकता।
कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार पूछना चाहिए, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने UCC लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने UCC लाया।
जनाब शाह ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक उसकी तरफ से लगाए गए इल्जाम पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नतीज के बारे में शिकायतें की, उन्होंने झारखंड में जश्न मनाया जहां JMM की क्यादत वाले INDIA इत्तेहाद को असेंबली इंतखाब में कामयाबी मिली थी। आईन के 75 साल के सफर के बारे में राज्यसभा में पीर को बहस शुरू हुई थी जो 2 दिन तक जारी रही। लोकसभा में यह बहस पिछले हफ्ते कराई गई थी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA اگلے سال سے صرف مقابلہ جاتی داخلہ امتحانات کرائے گی جو تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے کرائے جاتے ہیں، ایجنسی بھرتی کے لیے کرائے جانے والے امتحانات نہیں کرائے گی۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات کو خامیوں سے پاک کیا جائے اور جواب دہی طے کی جائے۔ جناب پردھان نے کہا کہ تعلیم اور صحت وزارتیں اس بات پر غور و خوض کر رہی ہیں کہ آیا میڈیکل امتحان نیٹ یو جی پین اور کاغذ سے کرایا جائے یا اسے آن لائن کرایا جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ممکن ہے کہ نیٹ یو جی کے لیے تفصیلی طریقہ کار کا اعلان 2 سے 3 ہفتے میں کر دیا جائے۔ تعلیم کے وزیر نے اسرو کے سابق چیئرمین کے رادھا کرشنن کی قیادت والی کمیٹی کی سفارشات کے بارے میں بتایا جو اس نے خوش اسلوبی اور شفافیت کے ساتھ امتحانات کرائے جانے اور این ڈی اے کو مستحکم کیے جانے کے ضمن میں کی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج حیدرآباد کے قریب بولارم کے مقام پر راشٹرپتی نلیم میں بہت سی نئی سہولتوں کا افتتاح کریں گی۔ ان سہولیات میں نلیم آنے والے لوگوں کے لیے ایک عمارت اور یادگاری تحفوں کی ایک دکان شامل ہے۔ وہ مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھیں گی جو نیلائم میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ وہ جمعے کو سکندر آباد میں کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ کو پریزیڈنٹس کلرز عطا کریں گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے لیے سال 2024-25 کے دوران بجٹ میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2013-14 میں یہ رقم تقریباً 21,000 کروڑ روپے تھی، جبکہ 2024-25 میں یہ رقم 1,22,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ کسانوں کی بہبود کے لیے جن بڑی اسکیموں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے ان میں پردھان منتری سمان ندھی پی ایم کسان، پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا پی ایم کے ایم وائی، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا پی ایم ایف بی وائی اور زراعت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کا فنڈ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جتن سنگھ نے کل نئی دلی میں کسانوں کے لیے اپنی نوعیت کے ایسے پہلے لباس کسان کوچ کا آغاز کیا ہے جو انہیں کیڑے مار دواؤں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ کسان کوچ نئے انداز کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کسانوں کی حفاظت میں کسی طرح کی خامی دور ہوگی۔
کہ ابھی تک ہم ایکسپوجر ہونے کے بعد کا علاج کرتے تھے، اب یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا علاج ہونے لگا، اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ دی فارمر کمیونٹی کے کس۔ اور اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ واشیبل ہے، 150 بار دھویا جا سکتا، اس کے علاوہ اس کی منیمم لائف سپین 2 برس ہے، اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے۔
اس تقریب میں کسانوں کو پہلی بار کسان کوچ بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج پیچنگ میں بھارت چین خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ اس کا مقصد دو طرفہ تعلقات میں 4 سال سے حائل تعطل کو دور کر کے دو طرفہ تعلقات بحال کرنا ہے۔ یہ تعطل مشرقی لداخ میں فوجی تعطل کے سبب ہوا تھا۔ جناب ڈوبھال چین کے اپنے ہم منصب اور وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی 23ویں مرحلے کی بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان مشرقی لداخ میں فوجوں کو پیچھے ہٹائے جانے اور گشت کرنے سے متعلق 21 اکتوبر کو کیے گئے سمجھوتے کے بعد دو طرفہ تعلقات بحال کرنے کے لیے بہت سے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سمندری طوفان چیرو کے بعد کے حالات میں بھارت کی طرف سے مدد دیے جانے پر وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ ایک تباہ کن سمندری طوفان تھا جو ہفتے کے روز فرانس کے جزیرے مایوٹ میں آیا تھا۔ اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے اس سلسلے میں تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فرانس کے ساتھ ہے اور وہ ہر طرح کی ممکنہ مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ جناب مودی کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے صدر میکرون نے سوشل میڈیا پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سمندری طوفان کے سبب مایوٹ میں کم سے کم 22 افراد ہلاک اور 1400 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ہماچل پردیش قانون ساز اسمبلی کا سرمائی اجلاس آج دھرمشالہ میں تپوون کے مقام پر شروع ہوگا۔ اس اجلاس میں کل 4 نشستیں ہوں گی۔ یہ اجلاس 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ایک رپورٹ۔
دھرمشالہ کے تپوون میں آج سے شروع ہونے والے ہماچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے لیے اسمبلی سیکرٹریٹ نے کل 316 سوالات موصول کیے ہیں، جس میں 248 ستارے والے اور 68 غیر ستارے والے سوالات شامل ہیں۔ ساتھ ہی حکومت 15 بل پیش کرے گی جسے بحث و مباحثے کے بعد منظور کیا جائے گا۔ असेंबली स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश असेंबली की तारीख में इस इजलास के दौरान पहली मर्तबा वक्फ़े सिफर मुतारिफ किया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुक्मरा पार्टी और अपोजिशन मेंबरान दोनों ही ऐवान में न सिर्फ अवामी मफाद के मामलात को उठाएंगे बल्कि बिला रुकावट इजलास मुनक़िद कराने में भी अपना तामीरी तआवुन देंगे। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
नेपाल में 13 दिसंबर को शुरू हुए भक्तपुर महोत्सव ने पिछले 5 दिन के दौरान लाखों सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। इस मेले का मकसद भक्तपुर के मुनफरिद और तारीखी फन सकाफत त्योहारों और तर्ज जिंदगी को दुनिया के सामने पेश करना है। भक्तपुर काठमांडू वादी का एक जिला है जिसे भक्तपुर दरबार स्क्वायर और चांगो नारायण मंदिर जैसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट।
मेले की इस भीड़भाड़ में गैर मुल्की सयाहों को योमारी, जूहू दाहू, बड़ा और रिवायती निवारी खाजा जैसे स्टॉल पर खानों का लुत्फ उठाते देखा गया। भक्तपुर दरबार स्क्वायर में पाउबा पेंटिंग नुमाइश और कांसे, पत्थर और लकड़ी के रिवायती मुजस्समों की नुमाइश मुनक़िद की गई। सयाहों ने रिवायती रक्स भी देखा जिसमें फनकारों ने बराही और लाखी रक्स पेश किया। कई स्कूलों के म्यूजिक बैंड्स और मुकामी कम्युनिटी ग्रुपों ने मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर बांसुरी और दीगर रिवायती साज बजाकर मार्च किया। मुकामी लोगों के तैयार करदा दस्तकारी नमूनों की भी नुमाइश की गई और उन्हें फरोख्त के लिए रखा गया। भक्तपुर से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
भारतीय अफराद उन 39 मुल्कों के शहरियों में शामिल हैं जिन्हें जनवरी 2025 से श्रीलंका का सफर करने के लिए मुफ्त वीजा दिया जाएगा। इसका ऐलान भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वजीर खारजा विजेता हिरात ने नई दिल्ली में बातचीत के दौरान किया जिसका एहतमाम इंडिया फाउंडेशन ने किया था। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी में एक पार्लियामानी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके तहत श्रीलंका 39 मुल्कों को मुफ्त वीजा फराहम करेगा जिनमें भारत भी शामिल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत भी श्रीलंका को यही सहूलत फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में दूर दूर तक शदीद सर्दी के हालात रहने की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अगले 2 से 3 रोज के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। खवातीन की बैन अलाक्वामी T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने दूसरे मैच में भारत को 9 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ये मैच रात नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। बैडमिंटन में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की खवातीन की डबल्स की जोड़ी ने BWF की ताजा तरीन आलमी दर्जाबंदी में अपने करियर का बेहतरीन 11वां मकाम हासिल किया है। शतरंज में नए आलमी चैंपियन डी गुकेश ने आइंदा होने वाले फिडे वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापस लेने की ये पेशरफ्त आलमी शतरंज चैंपियनशिप के बाद हुई है जिसमें उन्होंने दिंग लेरेन के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और मिलाप समेत कई अखबारों ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक बिल को लोकसभा में पेश किए जाने को पहली बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है, जबकि रोजनामा प्रताप ने इसके ताल्लुक से दिए गए वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि हमारा आईन खूबसूरत है, हमने अपनी विरासत को महफूज रखा है। रोजनामा मिलाप ने राजस्थान की भजनलाल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत किए जाने और सड़कों, बिजली, पानी और रेलवे से मुतालिक 24 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने और संग बुनियाद रखे जाने की खबर को पहले सफ़े की सुर्खी बनाया है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि BJP अपनी हुक्मरानी के तहत हर रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। इम्तहानात का इनकाद कराने वाली कौमी एजेंसी अगले साल तालीमी इदारों में दाखिले के लिए सिर्फ दाखिला इम्तहानात कराएगी और वो भर्ती से मुतालिक किसी इम्तहान का इनकाद नहीं कराएगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज पीचिंग में भारत चीन खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका अगले महीने से भारतीय बाशिंदों को सफर के लिए मुफ्त वीजा फराहम करेगा और वेस्टइंडीज ने खवातीन के T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।